आचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री दर्शन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये जो अभी 15वीं पुस्तक जो है निबंधन अनुयोग द्वार है, यहाँ लिखा है ऊपर इस टीका में, संत कम्म गभ्येषु शेष 18 अनुयोग द्वारेषु, यानी जो शेष 18 अनुयोग द्वार है वो क्या है उसकी अभी नीचे चर्चा करेंगे। पहले मंगलाचरण का यहाँ अर्थ लिखा है, नीचे देखते हैं। जिन्होंने 8 कर्मों का अंत करके प्रकट हुए केवल ज्ञान के द्वारा पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को देख लिया है, दिट्ठ परमठम, पहले क्या है, नठवीय अट्ठकम्मम, जिन्होंने 8 कर्मों का नाश किया है और केवल ज्ञान के द्वारा वो क्या करते हैं, दिट्ठ परमठम, पदार्थ के यानी सभी पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को देख लिया है। ऐसे अरिष्ट नेमी जिनेन्द्र, नेमीनाथ को अरिष्ट नेमी भी कहते हैं, ऐसे जो 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी जिनेन्द्र हैं, तो नमयूण उनको नमस्कार करके निबंधन अनुयोग द्वार का कथन करते हैं। निबंधन अनुयोगम वो छामी यानी मैं बताऊंगा, कथन करते हैं। भूतबली भट्टारक ने चूंकि यह सूत्र देशामर्शक रूप से लिखा है, अतएव इस सूत्र के द्वारा सूचित शेष 18 अनुयोग द्वारों की कुछ संक्षेप से प्ररूपणा करते हैं, वह इस प्रकार है। निबध्यते तद अस्मिन इति निबंधनम्, इस निरुक्ति के अनुसार जो द्रव्य जिसमें संबद्ध ने बंधा हुआ, तो जो द्रव्य जिसमें संबद्ध है उसे निबंधन कहा जाता है। निबंध जिसमें संबद्ध है, देखो यहाँ निबंधन के बारे में विषय परिचय में भी देखते, देखो थोड़ा यहाँ से देखते हैं, क्योंकि अभी किसी ने पढ़ा नहीं होगा ना, विषय परिचय से लेते हैं। हाँ, अभी ये वीरसेन स्वामी ने बताया, परंतु ये महाकर्म नाम का अलग लिखा था। हाँ हाँ, ये सब इसमें, ये दो ही पुस्तक उन्होंने लिखे। देखो विषय परिचय हम कहेंगे ना, देखेंगे तो आपको पता चलेगा। विषय परिचय पढ़ते हैं, 3 नंबर का पृष्ठ जो है प्रस्तावना का। अग्रायणीय पूर्व के 14 अधिकारों में 5वां चयन लब्धि नाम का अधिकार है। ये हमने धवला पुस्तक 1 में इसके विस्तार से चार्ट भी देखे थे। उसमें 20 प्रावृत है, इनमें चतुर्थ प्रावृत कर्म प्रकृति प्रावृत है। उनमें निम्न 24 अधिकार है, कृति, वेदना, स्पर्श, कर्म, प्रकृति, बंधन। अब ये यहाँ तक तो हमने देखा ना, कृति अनुयोग द्वार वगैरह 10वीं पुस्तक में देखा ना, फिर वेदना के हो गए खंड, उसमें स्पर्श कर्म वगैरह प्रकृति, अभी हमने बंध का अनुयोग द्वार भी देखा था विस्तार से। अब इसके आगे जो है निबंधन, प्रक्रम, उपक्रम, उदय, मोक्ष, संक्रम, लेशा, लेशा कर्म, लेशा परिणाम, साता सात, दीर्घ ह्रस्व, भवधारणीय, पुद्गलात्त है ना, पुद्गलात्म, निधित्त अनिधत्त, निकाचित अनिकाचित, कर्मस्थिति, पश्चिम स्कंध और अल्पभूतव। इन 24 अधिकारों में से प्रस्तुत षटखंडागम यानी मूल सूत्र के वेदना नामक चतुर्थ खंड में कृति पुस्तक 9 और वेदना की पुस्तक 10 से 12 तथा वर्गणा नामक 5वें खंड में स्पर्श, कर्म और प्रकृति पुस्तक 13 अधिकारों की प्ररूपणा की गई है। ये तो हमारे हो गई। बंधन अनुयोग द्वार जो अभी हमने 14वीं पुस्तक में देखा था उसमें बंध, बंधनीय, बंधक और बंध विधान इन 4 अवांतर अनुयोग द्वारों में विभक्त है, यानी उसमें उसके इतने अधिकार हैं। इनमें से बंध और बंधनीय अधिकारों की भी प्ररूपणा वर्गणाखंड पुस्तक 14वें में की गई है। बंधक अधिकार की प्ररूपणा खुद्दा बंध नामक द्वितीय खंड में तथा बंध विधान नामक अवांतर अधिकार की प्ररूपणा महान बंध नामक 6ठे खंड में की गई है। इस प्रकार मूल षटखंडागम में पूर्वोक्त 24 अनुयोग द्वारों में से प्रथम 6 अनुयोग द्वारों के ही विषय का विवरण किया गया है। अभी हमने 14वीं पुस्तक के अंत में देखा था 4 लाइन में उन्होंने वो बंधक अधिकार की बंध विधान उसके लिए महाबंध पूरा लिखा है, इसलिए वहां तो वहां से ही जान लेना ऐसा कहा था उन्होंने। अब शेष निबंधन आदि 18 अनुयोग द्वारों की प्ररूपणा यद्यपि मूल षटखंडागम में नहीं की गई है फिर भी वर्गणाखंड के अंतिम सूत्र को देशामर्शक मानकर यानी उस अंतिम सूत्र में से ये सारे माल उन्होंने निकाला। उनकी प्ररूपणा अपनी धवला पुस्तक पुस्तक 15 और 16 में वीर सेनाचार्य ने प्राप्त उपदेश के अनुसार संक्षेप में कर दी है। इसका नाम सत्कर्म प्रतीत होता है। उन शेष 18 अनुयोग द्वारों में से निबंधन, प्रक्रम, उपक्रम और उदय ये 4 यानी 7 से लेकर 10 अनुयोग द्वार पुस्तक 15 में प्रकाशित हो रहे हैं तथा शेष 14 11 से लेकर 24 अनुयोग द्वार पुस्तक 16 में प्रकाशित किए जाएंगे। इनका विषय परिचय संक्षेप में इस प्रकार है। अब निबंधन जो है निबद्धते तद अस्मिनिति निबंधनम, इस निरुक्ति के अनुसार जो द्रव्य जिसमें निबद्ध है उसे निबंधन कहा जाता है। निक्षेप योजना में इसके ये 6 भेद किए गए हैं, उस पर वो निक्षेप लगाएंगे, बाद में उसका वो सारा विस्तार से अर्थ आदि समझाएंगे। हाँ, जिसमें निबद्ध है, देखो इसकी बात है। हाँ, यहाँ आगे उसका ये कर्मों की प्रकृति कहाँ किस प्रकार होती है उसकी बात है, कर्म प्रकृति की बात है। देखो हम पूरा पढ़ेंगे ना तो ख्याल में आएगा। तो इसके तो पहले 6 निक्षेप लगाएंगे। इसमें कौन से? नाम निबंधन, स्थापना निबंधन, द्रव्य निबंधन, क्षेत्र निबंधन, काल निबंधन और भाव निबंधन। इन सबके स्वरूप का विवरण करते हुए यह नाम और स्थापना निबंधनों को छोड़कर शेष 4 निबंधनों को प्रकृत बतलाया है। साथ में यहाँ यह भी निर्देश किया गया है यद्यपि इस निबंधन अनुयोग द्वार में 6 द्रव्यों के निबंधन की प्ररूपणा की जाती है, ये 6 द्रव्यों का जो कुछ निबंधन होगा, फिर भी अध्यात्म विद्या का अधिकार होने से यहाँ उन सबको छोड़कर केवल कर्म निबंधन की ही प्ररूपणा यहाँ की गई है। कर्म का जो बंध है उसकी बात है। हाँ, क्योंकि छह द्रव्यों पर जो है पहले भी इस अपेक्षा से बात की थी ना, आकाश अपने प्रदेशों में है वैसे वैसे, तो ये छह द्रव्यों में वो जिसमें निबद्ध है वो कर्म में निबद्ध है ऐसा कहेंगे, यानी वो कर्म रूप से निबद्ध हो गया है, कर्म रूप बन गया है, ऐसा अर्थ ले सकते उसका। कर्म प्रकृति, यहाँ तो कर्मों के बंध की प्रकृतियों की बात आएगी। सर्वप्रथम यहाँ निबंधन अनुयोग द्वार की आवश्यकता प्रकट करते हुए यह बतलाया है कि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के द्वारा कर्मों और उनके मिथ्यात्व प्रवृत्ति प्रत्ययों की प्ररूपणा की जा चुकी है, साथ ही कर्मरूप होने की योग्यता रखने वाले पुद्गलों का भी विवेचन किया ही जा चुका है, किंतु उन कर्मों की प्रकृति कहाँ किस प्रकार होती है यह नहीं बतलाया गया। इसीलिए कर्मों के इस व्यापार को प्ररूपणा के लिए प्रकृति निबंधन अनुयोग द्वार का अवतार हुआ है। व्यापार की चाहिए, व्यापार की प्ररूपणा के लिए। नौ आगम कर्म निबंधन के दो भेद है, मूल कर्म निबंधन और उत्तर कर्म निबंधन। इनमें से मूल कर्म निबंधन में ज्ञानावरणादि आठ मूल प्रकृतियों के तथा उत्तर कर्म प्रकृति निबंधन में इन्हीं के उत्तर भेदों के निबंधन की प्ररूपणा की गई है। अभी हम मूल पर आते हैं, दो नंबर पृष्ठ पर जो जो विषय आएगा उसको हम पढ़ेंगे वहां से, क्योंकि पूरा तो अभी पढ़ने से कुछ बहुत ख्याल में नहीं आएगा। यहाँ अपने एक नंबर के पृष्ठ पर आते हैं, मंगलाचरण का अर्थ हमने देख लिया है, यहाँ निबंधन का भी अर्थ देखा था, उसकी निरुक्ति की जो द्रव्य जिसमें संबद्ध है उसे निबंधन कहा जाता है। निबंधन इस अनुयोग द्वार में पहले अपकृत निबंधन के निराकरणार्थ निबंध का निक्षेप करते हैं, वह इस प्रकार है। नाम निबंधन, स्थापना निबंधन, द्रव्य निबंधन, क्षेत्र निबंधन, काल निबंधन और भाव निबंधन, इस प्रकार निबंधन छह प्रकार का है। जिस नाम की वाचक रूप से प्रवृत्ति में जो अर्थ आलंबन होता है वह नाम निबंधन है, क्योंकि उसके बिना नाम की प्रवृत्ति संभव नहीं है। उसका कोई नाम रख देना वो है नाम निबंधन, वह नाम निबंधन अर्थ अभिधान और प्रत्यय के भेद से तीन प्रकार का है। उनमें एक व बहुत जीव तथा अजीव से उत्पन्न, यानी एक जीव, बहुत जीव, एक अजीव, बहुत अजीव, अभी उसके कॉम्बिनेशंस हो गए, उससे उत्पन्न प्रत्येक व संयोगी भंगों के भेद से अर्थ आठ प्रकार का है। इसको भी पहले अनेक पुस्तकों में हमने विस्तार से देखा था। इन आठ अर्थों में उत्पन्न हुआ ज्ञान प्रत्यय निबंधन कहलाता है। जो संज्ञा शब्द प्रवृत्त होकर अपने आप को जतलाता है वह अभिधान निबंधन कहा जाता है, यानी नाम है वो अपने आप को भी बताता है ना, केवल पदार्थ को बताता है ना, अपने आप को भी बताता है, तो उसको अभिधान निबंधन कहते हैं। अभिधान है ना, नाम और अभिधान एक ही बात है, नाम अपने आप को भी बतलाता है, ये उसका नाम अभी निबंधन हुआ। अथवा यह भी चूंकि द्रव्य निबंधन आदि निबंधनों में प्रविष्ट है अतएव उसे छोड़कर निबंधन शब्द को ही नाम निबंधन रूप से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर पुनरुक्त दोष नहीं आता। अब स्थापना निबंधन, स्थापना निबंधन सद्भाव स्थापना निबंधन और असद्भाव स्थापना निबंधन के भेद से दो प्रकार का है। जो जिस प्रकार से विवक्षित द्रव्य का अनुसरण करता है उसी को उसी प्रकार से स्थापित करना सद्भाव स्थापना निबंधन है। हम अन्य चीजों में तदाकार कहते, परंतु यहाँ आकार की बात नहीं है। तो जिस जिस रूप में अवस्थित है वैसा ही उसको स्थापित करना, वो सद्भाव स्थापना है। उससे विपरीत असद्भाव स्थापना निबंधन है। अब द्रव्य निबंधन कहेंगे। जो द्रव्य जिन द्रव्यों का आश्रय करके परिणमन करता है, अथवा जिस द्रव्य का स्वभाव द्रव्यांतर से प्रतिबद्ध है, वह द्रव्य निबंधन निबंधन करना उसको, वह द्रव्य निबंधन कहलाता है। यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से प्रतिबद्ध है, उसको द्रव्य निबंधन कहते हैं। ग्राम व नगर आदि क्षेत्र निबंधन है, क्योंकि प्रतिनियत क्षेत्र में उनका संबंध पाया जाता है। यानी जिनका जिनका संबंध पाया जाता है उसको ये निबंधन कहा है। जो अर्थ जिस काल में प्रतिबद्ध है वह काल निबंधन कहा जाता है। यथा आम्र वृक्ष के फूल चैत्र मास से संबद्ध है, यानी विशिष्ट ऋतु में ही वो फूल फलते हैं, फूलते हैं, तो उसको कहेंगे वो काल निबंधन। काल की अपेक्षा उसमें वो पाए जाते हैं। अम्लिका के फूल आषाढ़ मास से संबद्ध है। अम्लिका यानी इमली। विचकिल नामक वृक्ष विशेष के फूल वैशाख और ज्येष्ठ मास से संबद्ध है, क्योंकि वे इन्हीं मासों में पाए जाते हैं। इसी प्रकार दूसरों के भी काल निबंधन का जानकर कथन करना चाहिए। ये कर्म की बात ही नहीं है। कर्म का तो आगम नवागम जो कुछ है उसकी यहाँ उसकी कहाँ बात आई है। अब पहले में पहले निबंधन शब्द बताया, बंध ये संबंध बताता है। निबंधन यानी संबंध, तो संबंध किसका है। अभी ये काल की अपेक्षा संबंध क्यों। विशिष्ट काल में वो फूल पाए जाते हैं तो वो काल निबंधन का। विशिष्ट क्षेत्र में वो गांव बसा है इसलिए उसको क्षेत्र निबंधन कहा। क्षेत्र की अपेक्षा वहां संबंध पाया जाता है। कर्मों की बात अभी आई ही नहीं है। निबंधन शब्द पर नाम स्थापना द्रव्य भाव सब लगवाएंगे। इसी प्रकार हाँ ये जानकर कथाना चाहिए। अथवा पंचरात्रिक निबंधन काल निबंधन है, इसमें भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। पंचरात्रिक क्या होता है। पंचरत्तियाओ निबंधोत्तिवा, पांच रात्रियों में मिलकर कुछ ऐसा प्रोग्राम होता होगा, पता नहीं। जैसे हम अष्टान निकाह कहते, आठ दिन का वो निबंधन है। यहाँ क्या कहना चाहता है पता नहीं। जो द्रव्य भाव का आलंबन अर्थात आधार होता है वह भाव निबंधन है। जो द्रव्य भाव का आलंबन होता है, आधार होता है, जैसे लोभ के चांदी सोना आदि निबंधन है। जिसकी जहाँ उत्पत्ति होती है, हाँ, क्योंकि उनका आश्रय करके लोभ की उत्पत्ति देखी जाती है, तथा उत्पन्न हुआ लोभ भी उनका आलंबन देखा जाता है। लोभ के भी उपन्नस्वि लोहस्य तदा अवलंबन दंशनादो। लोभ के भी उनका आलंबन देखा, लोभ के चाहिए बीच में। उत्पन्न हुआ लोभ भी उनका आलंबन देखा जाता है। लोहस्स लोभ के उपन्नस्स भी लोहस्स तदा अवलंबन दंशनादो। हाँ, लोभ के उत्पन्न हुए लोभ के भी या उत्पन्न हुआ लोभ का भी उनका आलंबन देखा जाता है। क्रोध की उत्पत्ति का निमित्त भूत द्रव्य अथवा उत्पन्न हुआ क्रोध जिसका अवलंबन, अच्छा वो उत्पन्न हुआ लोभ को ही उन्होंने आलंबन किया, यानी लोभ भी उसका आलंबन है। यहां लिखा ना क्रोध की उत्पत्ति का निमित्त भूत द्रव्य अथवा उत्पन्न हुआ क्रोध जिसका अवलंबन होता है वह क्रोध निबंधन कहा जाता है। कोहावलंबन दव्वं वा उत्पन्न कोहावलंबन दव्वं वा सदा अवलंबन दंशनादो, उत्पन्न हुआ लोभ भी उनका आलंबन देखा जाता है। ये कुछ अटपटी वाक्य रचना लगती है, यानी वो किसी अन्य द्रव्य के आश्रय से वहां उत्पन्न होता है तो उसको निबंधन कहने में आएगा, वहां पर भाव निबंधन। शंका, अभी इतने सारे निबंधन बताए, यहां इन निबंधनों में से कौन सा निबंधन प्रकृत है, उसका समाधान। नाम निबंधन और स्थापना निबंधन को छोड़कर शेष सब निबंधन यहां प्रकृत है। हाँ, यह निबंधन अनुयोग द्वार यद्यपि छह द्रव्यों के निबंधन की प्ररूपणा करता है तो भी यहां उसे छोड़कर कर्म निबंधन को ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यहां अध्यात्म विद्या का अधिकार है। अन्य द्रव्यों में जो कुछ निमित्तपना बनता होगा उसको ही ले सकते हैं ना निबंधन में, जैसे हम यहाँ काल विशिष्ट काल में ऋतु, ये विशिष्ट ऋतु में फल फूल आते हैं, वैसे हम जीव में पुद्गल में जो निमित्त बनता है अन्य द्रव्यों का, ये पहले अपेक्षा आ चुकी है। शंका, निबंध अनुयोग द्वार किस लिए आया है? द्रव्य क्षेत्र काल और योग रूप प्रत्ययों की भी प्ररूपणा की जा चुकी है, उनके मिथ्यात्व असंयम कषाय और योग रूप प्रत्ययों की भी प्ररूपणा की जा चुकी है, तथा उन कर्मों के योग्य पुद्गलों के भी प्ररूपणा की जा चुकी है। अब आत्मलाभ को प्राप्त हुए उन कर्मों के व्यापार का कथन करने के लिए निबंधन अनुयोग द्वार आया है। क्या कहते हैं, प्रत्यय यानी द्रव्य क्षेत्र काल योग रूप प्रत्ययों की प्ररूपणा हो गई, उसमें मिथ्यात्व संयम कषाय योग वगैरह उसकी भी बात हो गई, बंधने योग्य कर्म पुद्गल उसकी भी वर्गणा रूप से बात हो चुकी है। अभी क्या रहा उसमें से, तो कर्मों के व्यापार का कथन, उसको अभी यहां बताएंगे। उनमें जो नौ आगम द्रव्य निबंधन है वह दो प्रकार का है, इसको नौ आगम द्रव्य निबंधन कहा, मूल कर्म निबंधन और उत्तर कर्म निबंधन। उनमें मूल कर्म आठ है, उनके निबंधन का कथन करते हैं यथा। तथ्य नानावर्णम सवद्रव्येषु निबद्धम नो सवपज्जायेषु, उनमें ज्ञानावरण सब द्रव्यों में निबद्ध है और नो सर्व पर्यायों में अर्थात असर्व पर्यायों में यानी कुछ पर्यायों में वह निबद्ध है। सब द्रव्यों में निबद्ध है यह केवल ज्ञानावरण का आश्रय करके कहा गया है, क्योंकि वह तीनों कालों को विषय करने वाली अनंत पर्यायों से परिपूर्ण ऐसे छह द्रव्यों को विषय करने वाले केवल ज्ञान का विरोध करने वाली प्रकृति है। नहीं समझे, सभी द्रव्य जानने में आवे ऐसी केवल ज्ञान में शक्ति है, अब उसको विरोध करने वाली ये प्रकृति है, इसलिए सब द्रव्यों में निबद्ध है कहा। हाँ, आपका प्रश्न है ज्ञानावरण सब द्रव्य में थोड़े ही निबद्ध है, तो निबद्ध ने अभी तो हम कर्म का बंध होना इतना ही निबंध का अर्थ समझते हैं। अभी जो हमने काल की अपेक्षा निबंधन कहा, उस विशिष्ट काल में फूल आते हैं, अन्य कालों में नहीं आते, बराबर है, वो अन्य कालों में नहीं आते, ये भी वहां कुछ हुआ ना। अभी ऐसे ज्ञानावरण क्या हो रहा है, ज्ञानावरण वो ज्ञान नहीं होने दे रहा है, किसका, सभी द्रव्यों का। तो ज्ञानावरण तो है तो जीव में, यहां पर जीव के प्रदेशों में स्थित है, परंतु वो क्या कर रहा है, सभी द्रव्यों संबंधी ज्ञान रोक रहा है, तो ये सभी द्रव्यों से निबद्ध है, ऐसा कहा, ऊपर उस पर आरोप किया, इसको जानने से रोका, इसको जानने से रोका, इसको जानने से रोका। हाँ, यहाँ तो ज्ञानावरण में ज्ञान को रोकना इसे अर्थ लिया। देखो, सब द्रव्यों में निबद्ध है यह केवल ज्ञानावरण का आश्रय करके कहा गया है, क्योंकि वह तीनों कालों को विषय करने वाली, वह है ना ज्ञानावरण, अनंत पर्याय से परिपूर्ण ऐसे छह द्रव्यों को विषय करने वाले केवल ज्ञान का विरोध करने वाली प्रकृति है, सर्वघाती प्रकृति है ना, वो अभी आती है। नौ सर्व ने सभी नहीं है, जैसे नौ कषाय कहते हैं, नौ कर्म कहते हैं, ऐसे नौ सर्व पर्याय या असर्व पर्याय, यानी सभी पर्यायों को, अन्य जो ज्ञान है वो सभी पर्यायों को विषय नहीं करते हैं, कुछ कुछ पर्याय तो जानते भी है, तो क्या कहते हैं, असर्वेने कुछ पर्यायों में निबद्ध है यह वचन शेष चार ज्ञानावरण प्रकृतियों की अपेक्षा से कहा गया है, क्योंकि शेष चार ज्ञानों में सब द्रव्यों को ग्रहण करने की शक्ति नहीं पाई जाती, विशिष्ट पर्यायों को जानते हैं और विशिष्ट पर्यायों को नहीं जान सकते, तो जो नहीं जान सकते उसमें वो उसका निबंधन पाया जाएगा। ज्ञानावरण आवरण उस संबंधी है ना, जो हम नहीं जानते उस संबंध, हाँ, न जानने की अपेक्षा वो ज्ञानावरण उन पदार्थों के साथ निबंधन है, ऐसा कह रहे। शंका, मति ज्ञान व श्रुत ज्ञान सब द्रव्यों को विषय करने वाले हैं, ऐसा क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि उनका मूर्त व अमूर्त सब द्रव्यों में व्यापार पाया जाता है। जानना तो होता है ना, हम देखते हैं, वो तो सभी द्रव्यों को जानते हैं परंतु सभी पर्यायों को नहीं जानते, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन द्रव्यों की त्रिकाल विषयक अनंत पर्यायों में उन ज्ञानों की सामान्य रूप से प्रवृत्ति है, विशेष रूप से नहीं है। सामान्य रूप प्रवृत्ति कैसे है, बस प्रत्येक द्रव्य में अनादि से अनंत काल तक पर्याय होती है, यह सामान्य रूप से हम कह सकते हैं। पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण हो गए, इनकी ये पर्याय होगी, वो बदलती रहेगी, इतना सामान्य रूप होगा, परंतु उसके हर एक पर्याय का विशेष ज्ञान नहीं है। अथवा यदि उनमें विशेष रूप से भी प्रवृत्ति स्वीकार की जाए तो वे दोनों ज्ञान केवल ज्ञान की समानता को प्राप्त हो जाएंगे। यदि हम ऐसा कहेंगे वो सभी पर्यायों को जानते हैं, तो केवल ज्ञान में उनमें क्या अंतर हुआ, परंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वैसा होने पर पांच ज्ञानों का जो उपदेश प्राप्त है उसके अभाव का प्रसंग आता है। यानी केवल ज्ञान की विशेषता है, वो सभी पर्यायों को उनके अविभाग प्रतिच्छेदों के सबको भिन्न भिन्न और एक साथ युगपत एक समय में जानते हैं, और अन्य ज्ञान तो क्षावक्षमिक ज्ञान है। शंका, नो शब्द को सबसे प्रतिषेधक रूप से क्यों नहीं ग्रहण किया जाता है, नो एने नहीं ऐसा अर्थ क्यों नहीं देते, तो सभी पर्यायों को नहीं जानते ऐसा होगा अर्थ उसका, समाधान नहीं, क्योंकि वैसा स्वीकार करने पर एक तो ज्ञानावरण के अभाव का प्रसंग आता है और दूसरे स्ववचन का विरोध भी होता है, इसलिए नो शब्द को देश प्रतिषेधक ही ग्रहण करना चाहिए। यानी वो तो जानता ही नहीं, ऐसा है ना, सभी पर्याय में अगर ला किसी को भी नहीं जानता ऐसा उसका अर्थ हो जाएगा। एवं दंशनावरणीयम, इसी प्रकार दर्शनावरण भी सब द्रव्यों में निबद्ध है और नौ सर्व पर्यायों में, अर्थात असर्व पर्यायों में यानी कि कुछ पर्यायों में वह निबद्ध है। शंका, दर्शनावरणी कर्म आत्मा में ही निबद्ध है क्योंकि ऐसा नहीं मानने पर ज्ञान और दर्शन के एक होने का प्रसंग आता है। ये पहले दर्शन तो स्वनमुख है और ज्ञान बाकी ऐसा बात आई थी, इसलिए शंकाकार पूछ रहा है वो ज्ञान आत्मा से निबद्ध कहो। यदि कहा जाए विषय और विषयी के सन्निपात के अनंतर समय में जो सामान्य ग्रहण होता है वह दर्शन है, सो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि विषय और विषय की सन्निपात के अनंतर जो आद्य ग्रहण होता है वह अवग्रह कहा जाता है। इस प्रकार के लक्षण से ज्ञान स्वरूप को प्राप्त हुए अवग्रह के दर्शन होने का विरोध आता है। क्या कहना चाहता है ये शंका करके अभी शंका चल रही है। तो जब आद्य ग्रहण होता है उसको तो अवग्रह नाम दिया है और उसी को अगर दर्शन कहेंगे तो दोनों एक हो जाएंगे। दूसरे विशेष के बिना, वो कॉमा ऊपर चला गया, विशेष के बिना केवल सामान्य का ग्रहण करना भी शक्य नहीं है क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की विशेषता से रहित केवल सामान्य का ग्रहण बन नहीं सकता। तीसरे ज्ञान क्या अवस्तु को ग्रहण करता है अथवा वस्तु को? प्रथम पक्ष तो संभव नहीं है, ज्ञान तो वस्तु को जानेगा अवस्तु को नहीं, क्योंकि ज्ञान के घटपट आदि वस्तुओं का परिच्छेदक न रहने से, परिच्छेदक यानी जानने वाला ज्ञायक न रहने से समस्त लोक व्यवहार के अभाव हो जाने का प्रसंग आता है। अब जो द्वितीय पक्ष, दूसरा पक्ष क्या था उसका? देखो वस्तु और वस्तु को, प्रथम पक्ष यानी अवस्तु को ग्रहण करता है वो तो हो नहीं सकता, अब वस्तु को, ये द्वितीय पक्ष उसका। द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सकता क्योंकि वैसा स्वीकार करने पर दर्शन के निर्विषय हो जाने का प्रसंग आता है, यानी ज्ञान वस्तु को जानता है तो फिर दर्शन किसको जानेगा ऐसा। इसी प्रकार दर्शन में भी उक्त दोनों दोषों का प्रसंग आना है, ज्ञान व दर्शन युगपत, यू एक्स्ट्रा हुआ है, युगपत वस्तु का परिच्छेदन करते हैं यह भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो क्यों बराबर करना, दोनों की युगपत प्रवृत्ति होने में विरोध आता है। प्रतिशंका, आचार्य उसको शंकाकार को शंका पूछ रहे हैं यह किस प्रमाण से जाना जाता है कि दोनों युगपत नहीं होते, ये कैसे जाना आपने? उसकी प्रतिशंका का समाधान, यह खेद है कि दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते इस आगम वचन से जाना जाता है। यदि कहा जाए, अभी शंका ही चल रही है उसकी, समाधान तो आगे है। यदि कहा जाए वे क्रम से वस्तु का परिच्छेदन करते हैं तो यह भी संभव नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर, ऐसा हुआ, ऐसा मानने पर केवल ज्ञान और केवल दर्शन के भी क्रम प्रवृत्ति का प्रसंग आता है तथा दोनों में से किसी एक का अभाव भी हो जाना चाहिए क्योंकि वैसा होने पर दूसरे के अगृहित ग्रहण संभव नहीं है। अगृहित ग्रहण को ये न्याय की भाषा है, ज्ञान क्या करता है अगृहित को ग्रहण करता है, तो ये दर्शन ने गृहित कर लिया तो ये अगृहित ग्रहण नहीं होगा उसका, ऐसा कुछ वो न्याय, अपना यहाँ न्याय का अभ्यास नहीं हुआ ना, वो सारी उसमें परिभाषाएं होती है। इस कारण ज्ञानावरण के समान दर्शनावरण भी है ऐसा जो वचन कहा गया है वह घटित नहीं होता, ये शंकाकार की लंबी चौड़ी शंका है। उत्तर तो 5 लाइन में दिया है और 15-20 लाइन तो शंका ही है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि बाह्य अर्थ से संबद्ध आत्मस्वरूप के जानने का नाम दर्शन है। यदि कहा जाए कि आत्मस्वरूप बाह्य अर्थ से संबंध नहीं रखता सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान सुख व दुख रूप उन सभी की प्रवृत्ति बाह्य अर्थ के आलंबन से ही देखी जाती है। अतएव ज्ञानावरण के समान दर्शनावरण भी है, यह वचन संगत ही है, यह सिद्ध है, शेष कथन जानकर करना चाहिए। बाह्य अर्थ से संबद्ध आत्मस्वरूप का जानना यानी बाह्य अर्थ को जानने वाले आत्मा को ग्रहण करना, ऐसा जैसे हम कहते नहीं, जो आत्मा बाह्य वस्तुओं को देख रहा है उस आत्मा को ग्रहण करना। जैसे हम कहते ना, मैंने ये रबर देखा, तो रबर देखने वाला मैं को मैंने ग्रहण किया पहले, ये दर्शन हुआ। ऐसा ये नहीं, पर्याय को जानने वाला तो ज्ञान हो जाएगा। बाह्य अर्थ से संबद्ध आत्मस्वरूप यानी जो आत्मा सबको जान रहा है, ऐसे आत्मा को दर्शन ग्रहण करते हैं। इनका तो सर्वत्र यही कथन है। वीरसेनाचार्य ने पहले से ही दर्शन के संबंध में जो अपने को ग्रहण करता है, बाह्य अर्थ को, आत्मा को और पर को, दोनों को ज्ञान तो स्व पर प्रकाशक है। बाह्य अर्थ से यानी पर पदार्थों के साथ जो संबंध रखता है, संबंध है, जानने वाला ही संबंध है ना, इसका और क्या संबंध है। ऐसे आत्मा को ग्रहण करता है वो दर्शन। परंतु अभी तक तो हमने समय सार में कहो, अष्टपावर में कहो, नियम सार में, कौन सी वो हम गाते यहाँ पढ़ते थे, स्व पर प्रकाशक ही सबको लिया था दर्शन। दर्शन की धौला में सर्वत्र व्याख्यान ऐसी ही है। जो हम अभी तक सीखे हैं वो व्याख्या यहाँ नहीं पाई जाती है। क्यों, बाह्य पदार्थ तो सब है, सभी द्रव्य और उसकी सभी पर्याय हैं। केवल ज्ञान तो सबको जान रहा है, केवल दर्शन उनका कहना जो सबको जानने वाले आत्मा को जान रहा है, ऐसा। फिर वो ज्ञान भी तो जानता है ना आत्मा का, यही तो बात होती है। ये दर्शन, अभी तक हमने जो दर्शन की परिभाषा सीखी और यहाँ जो देख, ये एक दूसरे से मेल नहीं खाती है, या हमके समझने में भूल हो रही कहीं। वो बहुत उसमें विवेचन किया था कि सामान्य रूप से लेना है, हाँ, उसमें कोई डिफरेंशिएट किए बिना वाला जो ग्रहण है, ऐसा वाला, और ऐसा उसी को तो उन्होंने सामान्य कहा था, और उसी को आत्मा का ऐसा ग्रहण ऐसा भी कहा था, पदार्थों को सामान्य रूप से ग्रहण करने वाले आत्मा को ऐसा लिया। जब जब ये ज्ञान दर्शन की बात आती है ना, दर्शन पर अटकते हैं हाँ। नहीं, क्योंकि जो पकड़ सकते वो ज्ञान ही हो जाता है ना, जिसको डिस्क्राइब करते हैं पहले हमने लिया था, विस्तार से लिया था उसको हाँ। यानी सामान्य ग्रहण यानी उन्होंने विदाउट डिफरेंशिएटिंग, हाँ, ये जीव है कि पुद्गल है कि इसे कोई बात नहीं करनी, वो उसको सामान्य ग्रहण कहा था हाँ, और उसी को आत्मा कहा था उन्होंने, वो उसका आत्मा का ग्रहण कहा था। हमें आत्मा ने स्व को जानना ऐसा भी नहीं लिया था वहां पर। अब हम आगे बढ़ेंगे। वेयनीयम सुख दुखम में निबद्धम, वेदनीय सुख दुखम में निबद्ध है, यानी किसका किसके साथ संबंध है उसकी बात यहां बता रहे हैं। सिर के वेदना आदि का नाम दुख है, उस वेदना का उपशांत हो जाना अथवा उसका उत्पन्न ही नहीं होना अथवा दुखोपशांति के कारणभूत द्रव्यादि की प्राप्ति होना, दुखोपशांति के कारणभूत द्रव्य ने वो क्रोसिन की गोली खाई या बाम लगाया हा? वो सिर दर्द मिल गया, क्यों, इसे सुख कहा जाता है। ये सुख कौन सा, कि दुखोपशांति के कारण वो द्रव्यादि की प्राप्ति होना, वो सुख, वो सच्चा सुख वाला सुख नहीं। उसमें वेदनीय कर्म निबद्ध है क्योंकि वह उनकी उत्पत्ति का कारण है। देखो वेदनीय आत्मा के सुख दुख में लिया है, बाह्य संयोगों को हम उपचार से कहते हैं, वो बाह्य पदार्थ नहीं लाता है उसमें, जहाँ वो दुखोपशांति के कारण वो द्रव्यादि की प्राप्ति होना, वो उसका दुख उपशांत हुआ, उसको हमने वो वेदनीय का कार्य कहा। अन्य जीवों के लिए जो साधन जो सामग्री है सुख उपजाने वाली, तो इसको बिना कारण के उसको देख देख कर दुख भी करता होगा ना, कोई ऐसे जीव भी होते हैं ना, कोई कारण नहीं उसको दुख का, तो मन में ही कुछ ना कुछ कल्पना करके दुखी होता रहता है। मोहनियम अपानम में निबद्धम, मोहनी कर्म आत्मा में निबद्ध है, ऐसा है ना, जिसमें निबद्ध है, जो उन्होंने पहले परिभाषा बनाई, आत्मा में निबद्ध है, कारण कि उसका स्वभाव सम्यक तो चारित्र रूप जीव गुणों के घातने का है। शंका, ज्ञान व दर्शन के समान सम्यक्त्व एवं चारित्र भी चूंकि बाह्य अर्थ से ही संबंध रखते हैं, अतएव मोहनीय कर्म सब द्रव्यों में निबद्ध है, ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि चारों ही घातिया कर्म जीव द्रव्य में ही निबद्ध है। यह जतलाने के लिए यहाँ बाह्य अर्थ का अवलंबन नहीं लिया है। आयुम भवम में निबद्धम, आयु कर्म भव के विषय में निबद्ध है, कारण कि भव धारण करना यह उसका लक्षण है। फिर शंका, भव किसे कहते हैं? उसका समाधान, उत्पन्न होने के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक जो विशेष अवस्था रहती है उसे भव कहते हैं, बाद में वो अवस्था बदल जाती ना, अन्य भव चालू हो जाता है। नामम तिधा निबद्धम, पोगल विवाग निबद्धम, जीव विवाग निबद्धम, खेत विवाग निबद्धम। नाम कर्म तीन प्रकार से निबद्ध है, पुद्गल विपाक निबद्ध, जीव विपाक निबद्ध और क्षेत्र विपाक निबद्ध। जो अघाती कर्म है ना, उसमें चार प्रकार पाए जाते हैं, वो जीव विपाकी कर्म होते, पुद्गल विपाकी होते, क्षेत्र विपाकी होते और कौन सा होता है, भव विपाकी होते। वो भव को तो आयु में लिया है, अभी यहाँ नाम की बात चल रही है, इसको बताएंगे। वर्ण गंध रस स्पर्श और संघात आदि नाम प्रकृतियों का विपाक पुद्गल में निबद्ध है, क्योंकि उनके उदय से वर्णादि की उत्पत्ति देखी जाती है, इसको पुद्गल विपाकी कहते हैं। ये सारा शरीर में उसका फल मिलता है ना, उसकी कुछ बातें बनती है। तीर्थंकर आदि कर्म जीव में निबद्ध होते हैं, क्योंकि उनका विपाक जीव में ही पाया जाता है। पुद्गल विपाक ही मेजॉरिटी है। आनुपूर्वी कर्म क्षेत्र में निबद्ध है, क्योंकि विग्रह गति में उसका उदय होता है ना, क्योंकि उसका विपाक प्रतिनियत क्षेत्र में ही पाया जाता है। इस कारण नाम कर्म तीन प्रकार से निबद्ध है यह सिद्ध होता है। गोदम अपानम में निबद्धम, गोत्र कर्म आत्मा में निबद्ध है, कारण कि उच्च व नीच गोत्र जीव की पर्याय स्वरूप से देखे जाते हैं। अंतरायम दानादि निबद्धम, अंतराय कर्म दानादिक में निबद्ध है, कारण कि दानादिकों के विषय में विघ्न करने में उसका व्यापार पाया जाता है। इस प्रकार मूल प्रकृति निबंधन प्ररूपणा समाप्त हुई, यानी जिस विषय में उसका व्यापार है उसमें वह निबद्ध है, ऐसा कहने में आता है। अब उत्तर प्रकृतियों के निबंधन की प्ररूपणा करते हैं, वह इस प्रकार है। चत्तारी नानावरणीयाणी दवपज्जायाणम देश निबद्धाणी, चार ज्ञानावरणीय प्रकृतियां द्रव्यों की पर्यायों के एक देश में निबद्ध है। केवल ज्ञानावरण तो सभी पर्यायों में निबद्ध है ऐसा कहा था, तो ये कहा एक देश में। अवधि ज्ञान द्रव्य की अपेक्षा मूर्त द्रव्यों को ही जानता है। धर्म अधर्म काल आकाश और सिद्ध जीव इन अमूर्त द्रव्यों को वह नहीं जानता। क्योंकि अवधि ज्ञान का निबंधन रूपी द्रव्यों में है। वो बीच में एक निबंध रूपी नहीं, वो निबंधन न डालना। और रूपी शब्द अलग निकालना, यानी पुद्गल द्रव्य में है ऐसा सूत्र वचन है। क्षेत्र की अपेक्षा वह घनलोक के भीतर स्थित द्रव्यों को ही जानता है, उसकी लिमिटेशंस बता रहे हैं ना अभी। उसके बाहर स्थित द्रव्यों को नहीं जानता, क्योंकि रूपी द्रव्य तो एक लोक में ही विराजमान है। काल की अपेक्षा वह असंख्यात वर्षों के भीतर जो अतीत व अनागत वस्तु है उसे ही जानता है, उनके बाहर स्थित वस्तु को नहीं जानता। वो अधिक से अधिक कितने काल तक जानता है पता है? अवधि ज्ञान जो देशावधि है ना, तो पल्ले में एक समय कम इतना पहले पूर्व का, और जो आगे वाले जो है परमावधि और सर्वावधि असंख्यात लोक तक जानते हैं। काल की अपेक्षा, क्षेत्र की भी अपेक्षा असंख्यात लोक, और काल की भी अपेक्षा असंख्यात लोक, सर्वावधि यह लिखा ना असंख्यात वर्ष, वो उसके डिटेल बताया असंख्यात वर्षों के। भाव की अपेक्षा वह अतीत अनागत एवं वर्तमान काल को विषय करने वाली असंख्यात लोक मात्र द्रव्य पर्यायों को जानता है, सभी पर्यायों को नहीं जानता। इसलिए अवधि ज्ञान द्रव्यों की समस्त पर्यायों को विषय करने वाला नहीं है। यानी भले वो रूपी को जाने, परंतु रूपी में भी समस्त पर्यायों को नहीं जानता है। इसी कारण अवधि ज्ञानावरण सब द्रव्यों के एक देश में निबद्ध है ऐसा कहा है। मनोपर्य ज्ञान भी चूंकि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा एक देश को ही विषय करने वाला है, अतएव मनोपर्य ज्ञानावरणीय भी देश निबद्ध है। उसमें भी बहुत सारे जो निबद्ध द्रव्यों के पर्यायों के साथ, जिसको वो नहीं जानता है उससे निबद्ध ऐसा कहने में, हाँ तो मन की पूरी बात नहीं जानता है, उसमें भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव का लिमिटेशन है ना, इतने द्रव्यों को जानेगा, इतने ही काल तक जानेगा, उसमें भी काल है, इतने ही क्षेत्र तक को जानेंगे। क्योंकि मनोपर्य ज्ञान के भी बहुत सारे भेद हैं, जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक। अभी वो मनुष्य क्षेत्र के बाहर से नहीं जानता है, मनुष्य लोक तक ही उसका जानने की कैपेसिटी है, हाँ तो बाकी को नहीं जानता, तो ये उसका निबंधन हुआ उसके साथ। आवरण है ना, जिनके साथ वो नहीं जानता उनके साथ वो निबद्ध है ऐसा कहने में आता है। ज्ञान आवरण में द्रव्यों से निबद्ध है ऐसा कहने में आता है। इसी प्रकार मति ज्ञानावरणीय और शुद्ध ज्ञानावरणीय की भी देश निबद्धता का कथन करना चाहिए। अभी हम तेलुगु भाषा नहीं जानते हैं, तो उसके साथ हमारा निबंधन है कहेंगे मति ज्ञानावरण का, शुद्ध ज्ञानावरण का। केवल नानावरणीयम सौव द्रव्येषु निबद्धम, केवल ज्ञानावरणीय सब द्रव्यों में निबद्ध है। कारण कि वह समस्त द्रव्यों को विषय करने वाले केवल ज्ञान का प्रतिबंधक है, इसका प्रतिबंधक है, इसलिए सभी से निबंध है ऐसा कहा। शंका, यह सूत्र में क्षेत्र काल और भाव का ग्रहण नहीं किया गया है, इसलिए उनका यह कथन करना चाहिए। यानी द्रव्यों को ही लिया ना, बाकी नहीं लिया। समाधान, नहीं, क्योंकि द्रव्यों से पृथकभूत क्षेत्र, काल और भाव का अभाव है। जिन जिन द्रव्यों को विषय करता है, नहीं करता है, जो देखा है, उनका अपना क्षेत्र, काल, भाव सब पाया जाता है। अब दर्शनावरण की बात करेंगे। थीन गिद्धित्यम निद्धा पैलाय वो चक्षु दंशनावरणीयम अपाणम्य निबद्धम स्त्यान वृद्धित्रय निद्रा प्रचला और अचक्षु दर्शनावरणीय आत्मा में निबद्ध है। ये तो दर्शनावरणी सारे आत्मा में निबद्ध उन्होंने देखे, पहले ही बताया था ना, नहीं सर्व द्रव्य में, ये सर्व द्रव्य में, ये आत्मा में लिए। कारण कि उक्त प्रकृतियां जीव के स्व संवेदन को घातने वाली है, यानी उसकी जागृत अवस्था नहीं रहती, इसलिए स्त्यान वृद्धि त्रय ने सभी निद्राएं ली। स्त्यान वृद्धि, निद्रा, निद्रा, प्रचला, प्रचला, ये त्रय में आ गए। फिर निद्रा और प्रचला लिए, ये पांचों निद्रा हो गई, और अचक्षु दर्शनावरणीय लिया। शंका, अभी ये शंकाकार पूछ रहे हो, देखो रस स्पर्श गंध शब्द श्रुत, सॉरी दृष्ट श्रुत व अनुभूत अर्थ को विषय करने वाली अपनी शक्ति विषयक जीव के उपयोग को अचक्षु दर्शन कहा जाता है। विशिष्ट पदार्थ को विषय करने वाली अपनी शक्ति, उस संबंधी जीव का उपयोग है, उसको अचक्षु दर्शन कहा जाता है। इसीलिए अचक्षु दर्शन का निबंधन बाह्य अर्थ होना चाहिए। समाधान, यह कहना सत्य है, किंतु उक्त बाह्यार्थ निबंधनता की यहाँ विवक्षा नहीं की गई है, क्योंकि पहले तो उन्होंने बताया था कि वहाँ पदार्थों में, यहाँ लिखा था देखो, बाह्य अर्थ से संबद्ध आत्मस्वरूप को जानने का नाम दर्शन है, ऐसा कहा था। ऐसे आत्मा को जानना, अब यहाँ भी क्या कहते हैं, रस स्पर्श वगैरह, ये तो शंकाकार ने पूछा। ये बाह्य अर्थों को विषय करने वाली अपनी शक्ति विषय जो जीव का उपयोग है, उस उपयोग को अचक्षु दर्शन कहा था। अचक्षु दर्शन की उन्होंने परिभाषा, नहीं पर यहाँ आत्मा के शक्ति को विषय बनाया और वहां बाह्य अर्थों को विषय किया, विषय करने वाले आत्मा को विषय किया और वो डायरेक्ट बाह्य अर्थों को ही विषय किया, इसमें डिफरेंस है। है ना, आत्मा है ना, परंतु वो उपयोग वहां बाह्य अर्थों को विषय कर रहा है, इसीलिए ज्ञान और दर्शन ऐसे दो भेद पड़े उसमें। बाह्य अर्थ करने वाले आत्मा की शक्ति को विषय करने वाला वो दर्शन, और बाह्य अर्थ को विषय करने वाला वो ज्ञान। तो वो अचक्षु दर्शन, अभी उसके आवरण की बात नहीं, पहले में शंकाकार की शंका यही है, उसी को तो अचक्षु दर्शन कहा। तो कहते हैं इसीलिए अचक्षु दर्शन का निबंधन बाह्य अर्थ होना चाहिए, वो चक्षु दर्शन आवरण का चाहिए था। ठीक है, उन्होंने शॉर्ट में चक्षु दर्शन का ही लिख दिया। समाधान, यह कहना सत्य है, किंतु उक्त बाह्यार्थ निबंधनता की यहाँ विवक्षा नहीं की गई है। शंका, उसकी विवक्षा क्यों नहीं की गई है? उसका समाधान, सभी दर्शन ज्ञान के समान बाह्य अर्थ को विषय करने वाला नहीं है, इस बात के ज्ञापनार्थ यहाँ उसकी विवक्षा नहीं की गई है। अभी भी कंफ्यूजन चालू ही है ना? चक्षु दंशनावरणीयम गरुव लहु अनंत पदेय सीएसु सव्वे दव्येसु निबद्धम। चक्षु दर्शनावरणीय कर्म गुरु व लघु ऐसे अनंत प्रदेश वाले द्रव्यों में निबद्ध है। चक्षु दर्शन किस में है प्रवृत्त? चक्षु इंद्रिय संबंधी जो ज्ञान है, हाँ, उस संबंधी जो, तो यहाँ क्या कहते हैं, चक्षु के द्वारा हम क्या देख सकते हैं? बड़े बड़े स्कंद देखेंगे ना, अनंत प्रदेश। कहते संख्यात व असंख्यात प्रदेश वाला पुद्गल द्रव्य चक्षु दर्शन का विषय नहीं होता, किंतु अनंत प्रदेश वाला पुद्गल द्रव्य ही उसका विषय होता है। यानी विषय तो उसमें भी लिया, द्रव्यों को भी विषय लिया है, बाह्य द्रव्यों को विषय लिया है, परंतु उस विषयों को जानने वाले आत्मा की मुख्यता है यहाँ पर, बाह्य को नहीं ग्रहण करता, ये बात नहीं है। यहाँ लिखा ना चक्षु दर्शन किसको विषय कर रहा है, अनंत प्रदेश वाले पुद्गल द्रव्य ही उसका विषय होता है। इस बात को जतलाने के लिए अनंत प्रदेश वाले द्रव्यों में यह कहा है, यह वचन देशामर्शक है, इसलिए उससे अचक्षु संज्ञा वाले सब दर्शनों की यह प्ररूपणा करनी चाहिए। यानी पहले बाह्य अर्थ की मुख्यता नहीं थी, आत्मा की थी, अब यह अचक्षु दर्शन में भी ये बात हो जाएगी, क्योंकि उसके भी जो विषय है, अभी जो कोई रस विषय है, जो संगीत विषय है, भाषा विषय है, उसमें भी विशिष्ट को ही ग्रहण कर सकता है, वो वहां वहां उसमें भी लागू होगा। गुरु व लघु यह अनंत प्रदेश वाली स्कंद का विशेषण है, क्योंकि चक्षु इंद्रिय के द्वारा लोह दंडादि रूप गुरु और अर्कतुल यानी आंख के पेड़ का रुआ, ये मालूम है आंख की रुई यानी वो तो कपास होती है ना, बहुत ऐसे हवा में उड़ जाते, वो झाड़ पर लगते हैं और वो ऐसे फूलते हैं उस, और उसमें से वो निकल जाते हैं ऊपर, तो उसको अर्कतुल कहा। आदि रूप लघु पदार्थों का ग्रहण पाया जाता है। शंका, अगुरु अलघु यह विशेषण क्यों नहीं करते? समाधान, नहीं, क्योंकि परमाणु आदि चक्षु इंद्रिय के विषय नहीं होते। यानी जो गुरु भी नहीं लघु भी नहीं, ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? यहाँ तो गुरु और लघु ऐसे द्रव्यों में निबद्ध है, कहा अगुरु लघु में नहीं है, क्या कहना चाहते? जो गुरु भी नहीं लघु भी नहीं ऐसे को नहीं लिया, जो गुरु और लघु ऐसे जो अनंत प्रदेशी है ऐसे स्पेसिफिकली बताया, अनंत प्रदेशी होने चाहिए। शंका, सभी दर्शन अध्यात्म अर्थ को विषय करने वाला है, ऐसी प्ररूपणा पहले की जा चुकी है, किंतु इस समय बाह्यार्थ को चक्षु दर्शन का विषय कहा है। पहले बताया ना आत्मा की शक्ति को विषय करने वाला, और अभी बाह्य अर्थों की बात कर रहे हैं। इस प्रकार यह कथन संगत नहीं है, क्योंकि इसमें पूर्वापर विरोध है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के बाह्य पदार्थों में प्रतिबद्ध आत्मशक्ति का संवेदन करने को चक्षु दर्शन कहा जाता है। बाह्य अर्थ में प्रवृत्ति है ना उसकी, कि इस प्रकार के बाह्य पदार्थों में प्रतिबद्ध आत्मशक्ति, यहाँ बहुत सारा वो क्लियर करने की कोशिश है। नहीं होते क्या करें, हाँ होता है ना, अचक्षु में भी लागू होता है, दोनों में लागू होता है, सभी दर्शनों में ये होगा। क्या होगा? बाह्य पदार्थों में प्रतिबद्ध ऐसे आत्मशक्ति का संवेदन। ये आया ना यहाँ पर, ये तो पहले ही बताया, देखो यहाँ पर है। और चक्षु दर्शन की परिभाषा शंकाकार ने बताई थी 9 नंबर के पेज पर, दूसरी लाइन, रस स्पर्श गंध शब्द दृष्ट श्रुत व अनुभूत अर्थ को विषय करने वाली अपनी शक्ति विषयक जीव के उपयोग को अचक्षु दर्शन कहा जाता है। वहां दृष्ट क्यों कहा पता नहीं है, दिट्ठ भी कहा है। वो भले शंकाकार की शंका है, फिर भी उसमें उन्होंने तो डेफिनेशन बता दी है। तो वहां उत्तर भी दी गई, अचक्षु दर्शन को भी निबंधन बाह्य अर्थ का निबंधन होना चाहिए, तो है वहां पर उसकी मुख्यता नहीं की। वो उन्होंने शंकाकार की शंका में उन्होंने बताया था। हाँ, चक्षु दर्शन में बाह्य अर्थ की मुख्यता की। फिर शंका, पांच दर्शनों के लिए अचक, हाँ ये जो निराकरण होगा वो आगम से होगा, आगम से होगा, आगम के द्वारा इसकी क्लैरिटी होती है ना। ये दर्शन ज्ञान के सब एक एक पर्याय की बात होती है कि उसका क्या विषय है, उसके आत्मा के कितने प्रदेश है, आत्मा में कितने गुण हैं, ये कहाँ से जाना, इस गुण का नाम या अगुर लघु गुण वगैरह कुछ दिखता होगा अलग से, चक्षु दर्शन दिखता होगा। आत्मा के अनंत गुणों का एक रूप ऐसा जो संवेदन है, आत्मिक आनंद आया उसको। हाँ, आत्मा की अनुभूति। हाँ, वो अभी दर्शन हो रहा है, अभी ज्ञान हो रहा है, ऐसा वहाँ कुछ है नहीं है। हाँ, नहीं, आत्मा दर्शन जो सम्यक दर्शन है वो तो श्रद्धा, वो श्रद्धा है। हाँ, उसमें आत्मा में कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं होता है ये तो आगम से ही क्लैरिफिकेशन होता है। वही तो मैंने बताया अभी। नहीं, उनका प्रश्न वही था कि समय दृष्टि को वो जिसको उसको तो पता चलता है कि नहीं है, तो मैंने वही बताया कि आत्मा की अनुभूति में तो आनंद की अनुभूति है और कुछ वहाँ नहीं समझता है। हाँ, ज्ञान के क्षोभम नहीं बढ़ता है, जो ज्ञान है उतना ही है, सहज ख्याल में नहीं आता है ऐसी कोई बात, ये तो हमें आगम से ही पता चलता है, केवल ज्ञान का ये विषय है। और शुद्ध ज्ञान उसको आगम से जानता है। वो भी बताया उनको कि उसमें क्षोभम ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी नहीं होती है। वो खुलेगी, वो आगम के द्वारा ही खुलेगी। अभी इतना डिटेल निकालो ना, ऐसे ये न्याय की भाषा होती है, उसमें न्याय दीपिका वगैरह ग्रंथों में भी यही इसी डेफिनेशन, ये यतिवृष आचार्यों की खास ये जो आत्मा को पकड़ने वाला है ना, आत्मशक्ति को संवेदन करने वाला, उन्होंने दर्शन कहा है। और अन्य शास्त्रों में जो डेफिनेशन आती है कि सामान्य रूप से ग्रहण, और यहाँ इन्होंने भी सामान्य रूप से ग्रहण कहा है, परंतु ये जो सभी पदार्थों को, क्योंकि उसने आत्मशक्ति के संवेदन को मुख्य किया है, इसलिए बाकी पदार्थों को कन्फ्यूजन होता है, क्या करें अभी यानी वो बाह्य पदार्थों के साथ प्रतिबद्ध है। हाँ, ऐसा जो आत्मशक्ति, उसके लिए साधा उदाहरण है, उन्होंने हर जगह ऐसा ही दिया, मैं इसको जानता हूँ, ये होती ना, कोई भी चीज जानते हैं तो मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये बात उसके साथ ही होती है, वही सिद्ध होता है। हाँ, तो है ना, उसमें भी दर्शन हो ही जाता है, अपने में भी वो लगेगा, अपने को भी जानने वाला ज्ञान है ना। देखो फिर शंका, पांच दर्शनों के लिए अचक्षु दर्शन ऐसा एक निर्देश किस लिए किया है, ये सबको मिलकर अचक्षु दर्शन कहा है, देखो कौन सा स्थान वृद्धि त्रय निद्रा और प्रचला वगैरह है ना, तो समाधान उसकी उनकी परस्पर में प्रत्याशक्ति है इस बात के जतलाने के लिए वैसा निर्देश किया गया है। ये आवरण के लिए उन्होंने पांच निद्रा है लिया है और एक अचक्षु दर्शन आवरण, सबको मिलकर अचक्षु दर्शन कहा, पांच निद्रा और अचक्षु दर्शन। फिर शंका, उनके परस्पर में प्रत्याशक्ति कैसे है, उसका समाधान नीचे विशेषार्थ भी दिया है। विषय से पृथकभूत अतएव युगपत स्व और पर को प्रत्यक्ष होने वाले ऐसे चक्षु दर्शन के विषय के समान उन पांचों दर्शनों के विषय का दूसरों के लिए ज्ञान कराने का कोई उपाय नहीं है। इनकी समान इसकी समानता पांचों ही दर्शनों में है, यही उनमें प्रत्याशक्ति है। अभी इसको खोलकर बता रहे हैं विशेषार्थ में। यहां शंकाकार का कहना है, जिस प्रकार चक्षु दर्शन की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की गई है, इसी प्रकार से त्वगिंद्रियादि यानी क्या, त्वक यानी त्वचा, त्वचा यानी स्पर्शन इंद्रिय, तो स्पर्शन इंद्रियादि से उत्पन्न होने वाले शेष पांच दर्शनों की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार न कर, अच्छा ये पांच दर्शन यानी चक्षु दर्शन के अलावा, हाँ रस स्पर्श गंध शब्द और दृष्ट श्रुत अनुभूत जो लिखा था ना उन्होंने, पहले देखा सुना और अनुभूत के, ये मन के बारे में था। देखो शंकाकार की जो शंका नौ नंबर पर थी, ये दृष्ट श्रुत अनुभूत को विषय करने वाला वो तो मन का होता है। स्पर्शनेन्द्रिय रसनेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय कर्णेन्द्रिय और मन, इसको त्वगिंद्रिय आदि से उत्पन्न होने वाले शेष पांच दर्शन। नहीं नहीं नहीं, दृष्ट श्रुत और अनुभूत के बारे में जो मन का, तीनों को एक साथ लेना, ये मन का विषय। हाँ, दृष्टि ने देखा हुआ, मन स्पर्श रस गंध शब्द और मन के द्वारा जो मन का विषय, मन का विषय क्या है, देखा हुआ सुना हुआ और अनुभूत किया हुआ, दृष्ट श्रुत और अनुभूत, ये तीनों को मिलकर मन, पहले शंका में वहीं पर लिख दे सकते हैं आप, यानी चक्षु को छोड़कर अन्य पांच सब लेना, अन्य चार इंद्रिया और मन, इन पांच दर्शनों की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार न कर उन्हें एक अचक्षु दर्शन के ही अंतर्गत क्यों कहा गया है, ऐसे शंकाकार ने पूछा था। उसके उत्तर में यहां यह कहा गया है कि जिस प्रकार चक्षु दर्शन की विषयभूत वस्तु विषयी, विशेषार्थ पढ़ रही हूं, त्वगिंद्रिया से हमने देखा था ना, देखो विशेषार्थ फिर पढ़ू। यहां शंकाकार का कहना है कि जिस प्रकार चक्षु दर्शन की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की गई है, उसी प्रकार त्वगिंद्रियादि से यानी स्पर्शादि से उत्पन्न होने वाले यानी स्पर्शनेन्द्रिया से उत्पन्न होने वाले शेष पांच दर्शनों की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार न कर उन्हें एक अचक्षु दर्शन के ही अंतर्गत क्यों कहा गया है, सबको मिलकर अचक्षु दर्शन क्यों कहा है, यानी पांच निद्रा अलग और अचक्षु दर्शन, तो उस अचक्षु दर्शन में क्या लिया, स्पर्शनेन्द्रिया द्वारा रसनेन्द्रिया घ्राणेन्द्रिय द्वारा श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा और मन के द्वारा जो ग्रहण किया विषय, तो उससे उत्पन्न होने वाले जो पांच दर्शनों को क्यों नहीं अलग अलग स्वीकार किया, एक में क्यों डाला सबको मिलकर, इसके उत्तर में मिला ना। यहाँ यह कहा गया है जिस प्रकार चक्षु दर्शन की विषयभूत वस्तु विषयी से पृथक होने के कारण, विषयी, हाँ विषयी कौन है, देखने वाला, यानी क्या है, चक्षु है, आंखों से पृथक रहकर उसको देखती है, उस इंद्रिय के साथ वो संबंध को नहीं आती, दूर से ही आंखें दूर से ही देखती है, वो विषय उसके विषयी और विषय वो प्राप्त नहीं होते, बीच में अंतर है ना उनके, वैसे अन्य में नहीं होता, त्वचा है, गंध है, वो सारे वो परमाणु आकर उसके साथ भिड़ते हैं। हाँ, पृथक होने के कारण एक साथ स्वर पर दोनों के लिए प्रत्यक्ष होती है, क्या कहते हैं, जिस प्रकार चक्षु दर्शन की विषयभूत वस्तु विषय ने चक्षु से पृथक होने के कारण एक साथ स्वर पर दोनों के लिए प्रत्यक्ष होती है, और इसीलिए दूसरों को उसका ज्ञान भी कराया जा सकता है। नहीं समझे, आप पुस्तक में से पढ़ रहे हो तो ये पुस्तक और आपके आंख, उसमें तो अंतर है, विषय से वो पृथकभूत वस्तु है, इसलिए आप भी उसको देख सकते हैं और मैं भी देख सकती हूँ, आप उसको देख रहे हैं। फिर पढ़ती हूँ, चक्षु दर्शन की विषयभूत वस्तु विषय ने चक्षु से पृथक होने के कारण एक साथ, ये जो वस्तु है ना, आप जो पुस्तक पढ़ रहे हो वो वस्तु हुई, वो जो पुस्तक है वो एक साथ स्वर पर दोनों के लिए प्रत्यक्ष होती है, वो आपके लिए भी और मेरे लिए भी, दोनों के लिए वो जानने में आ रही है, वो प्रत्यक्ष है उनके दोनों के लिए, और इसीलिए दूसरों को उसका ज्ञान भी कराया जा सकता है। वो पुस्तक आपके सामने है, इसका अन्य को भी ज्ञान हो जाता है, मतलब आपको विशिष्ट गंध आ रही कि नहीं, त्वचा से वो आप जान रहे कि नहीं, वो दूसरे को पता नहीं चल रहा है। इस प्रकार उक्त पांचों दर्शनों की विषयभूत वस्तु, कौन कौन सी विषयभूत वस्तुएं हैं, हाँ स्पर्श रस गंध शब्द और कोई दृष्ट श्रुत अनुभूति, ये उसकी वस्तुएं हुई, विषयी हुए, पदार्थ हुए, तो प्राप्यकारी त्वगिंद्रिया से पृथक न रहने के कारण, प्राप्यकारी कहते हैं और अप्राप्यकारी, प्राप्यकारी यानी वो इंद्रियों से भिड़ते हैं इसलिए उसको प्राप्यकारी कहा, तो उससे वो पृथक नहीं रहते, एक साथ स्वर पर दोनों के लिए प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। जो परमाणु आपके कर्ण इंद्रिय से जुड़े हैं, भिड़े हैं, वो भले वो एक आवाज सबको सुनाई दे रही है, परंतु हर एक के वहां के परमाणु अलग अलग हो गए ना, इसीलिए उसका दूसरों को एक साथ ज्ञान भी नहीं कराया जा सकता। यही इन पांचों दर्शनों में प्रत्याशक्ति है जो सब में समान है। चक्षु की बात जो है, चक्षु इंद्रिय का जो विषय है वो दूसरों के भी ज्ञान में आता है। अब यहाँ दर्शन की चर्चा है परंतु हम ज्ञान के द्वारा समझाएंगे। ओहि दंशनावरणीयम रूवि दव्येषु निबद्धम, अवधि दर्शनावरणीय रूपी द्रव्यों में निबद्ध है, रूपी द्रव्य विषयक आत्मशक्ति के संवेदन का विघात करने के कारण, यह अवधि ज्ञानावरण दर्शनावरण क्या करता है, रूपी द्रव्य संबंधी जो आत्मशक्ति का संवेदन है उसका विघात करने के कारण पहले के ही समान इसकी बाह्यार्थ विषय प्ररूपणा का कारण कहना चाहिए। यहाँ तो बाह्य अर्थ की मुख्यता से लिए, कौन से बाह्य अर्थ, कि रूपी द्रव्य विषय आत्मशक्ति जो है जानने वाली, केवल दंशनावरणीयम सवद्रव्ये निबद्धम, केवल दर्शनावरणीय सब द्रव्यों में निबद्ध है, कारण कि केवल दर्शन की विषयभूत अनंत सम्यक्त्व ज्ञान चारित्र्य एवं सुख आदि रूप शक्तियों का अवस्थान बाह्य अर्थ का ही आश्रय करके पाया जाता है। फिर शंका, केवल दर्शनादिकों की बाह्यार्थ निबद्धता का कथन किस लिए किया जाता है? कभी बाह्यार्थ को मुख्य करते और कभी आत्मा के उसको मुख्य करते, ऐसा क्यों? उसका समाधान, दर्शन का विषय बतलाने के लिए उसका कथन किया गया है, कारण कि दर्शन का विषयभूत अर्थ अध्यात्म रूप होने से दूसरों को प्रत्यक्ष नहीं है। अतएव इसके बिना उसका ज्ञान कराने के लिए और दूसरा उपाय ही नहीं था। क्या कहते हैं, वो केवल दर्शन को भी, वो तो ये आत्मा की शक्ति को ही जानने वाला है, फिर बाह्य अर्थ की क्यों बात कर रहे हैं? तो कौन कौन से पदार्थों को वो विषय करने वाली आत्मशक्ति है? तो सभी पदार्थों को विषय करने वाली आत्मशक्ति, ऐसी बात यहां बताएं। विषयभूत अर्थ अध्यात्म रूप यानी आत्मा ही उसका, आत्मा की शक्ति ही उसका विषय है। दर्शन का विषय क्या है? आत्मा की शक्ति। कैसी शक्ति? बाह्य पदार्थों को जानने की शक्ति। कौन से बाह्य पदार्थ? सभी। इसलिए उसकी मुख्यता करके यहाँ केवल दर्शनावरण सभी द्रव्यों में निबद्ध है ऐसा कहा। पंद्रह नंबर, देखो इन्हें ज्ञान में क्या होता है, बाह्य अर्थ को जानना होता है, और दर्शन में क्या होता है, उस अर्थ को जानने की आत्मा की शक्ति। हमारा ज्ञान कितना है, मान लेते बस इतनी तीन चीजों को जानने का है, अब दर्शन क्या होगा, आत्मा की इन तीन चीजों को जानने की शक्ति को जानने वाला वो दर्शन, जानने यानी ग्रहण करने वाला भी क्या करेगा। हाँ, यानी उसको भी बाह्य अर्थ में, यानी दोनों स्वपर प्रकाशक उसको भी कहा है, कुंदकुंदाचार्य ने कहा है, दर्शन भी स्वपर प्रकाशक है और ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है, आपको याद है? हम यहाँ बीच में कहा था उनका ऐसा कि नहीं, इसको विषय करने वाला आत्मा का, यानी इसको विषय करने किया ही ना आत्मा की शक्ति ने, परंतु उस शक्ति को ग्रहण करने वाला वो दर्शन। अकेले आत्मा को ग्रहण करता है ऐसा भी नहीं लिया, बाह्य पदार्थों को विषय करने वाले आत्मा की शक्ति को विषय कर रहा है इस तरह से। न्याय की भाषा नहीं समझते, न्याय की भाषा इसी उत्पत्ति होती है। हाँ, वो उसमें बहुत है न्याय की बात है, हेतु वगैरह सब, वो परीक्षा मुख भी है वैसे ही, वो दिखती है छोटी पुस्तक में, उसमें भी बहुत माल है। हाँ, ये पूरा जो सिद्धांत प्रवेशिका ना, ये लघु नहीं, लघु तो छोटी है, वो जो मूल सिद्धांत प्रवेशिका लिखी है गोपाल दास जी बरैया ने, तो उनमें तो सभी विषय लिए, न्याय के लिए, गुणस्थान के लिए है, ये सारे कर्णन योग का विषय लिए है, इवन वो नाना गुणानी वगैरह सब उसमें समझाए, गुणानी नाना गुणानी। हाँ, नहीं पूरा ही वो आठ भाग वाले, वो नहीं वो सात भाग वाली, तो कैलाश चंद जी ने उसमें से निकाले, वो नहीं गोपाल दास जी बरैया, उसमें सिद्धांत प्रवेशिका, ये सोनगढ़ वालों ने उसमें से 168 क्वेश्चंस निकाल के लघु बनाई, मूल जो सिद्धांत प्रवेशिका है, ऐसे इतनी जाड़ी है ना, ऐसे इतने पॉकेट बुक नहीं, उन्होंने सभी ग्रंथों के परिभाषाएं लिए उसमें। अब ये द्रव्य किसे कहते हैं, वो तो हमने उसी में से सीखे है ना, फिर भी उसको विस्तार से समझाने के लिए खाली पढ़ने से नहीं समझ में आता। वो वहाँ जो विद्यार्थी पढ़ते हैं ना, मेरे ख्याल से कुमुद कौन सी सम्यक, तो कौमुदी ऐसी कुछ है, या प्रमेय कमल मार्तंड वगैरह ऐसे जो ग्रंथ है, परीक्षा मुख केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता, इन्होंने लिए थे ना, हेमचंद जी ने लिए थे देवलाली शिविर में 20 दिन, सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे लेते थे। अभी वो न्यायदीपी का भी है वैसे। नहीं, वो न्याय सीखे, न्याय के किसी पंडित को यानी जिसका अभ्यास है, क्योंकि क्या बात है, पढ़ना अलग बात होती है और उसका अर्थ समझाए, कोई मर्म समझाए तो जल्दी उसमें से ग्रास्पिंग होता है। चलो आगे पढ़ेंगे 15 नंबर। सादा साधारणम अप्पाणम्मी निबंधो, साता वेदनी और असाता वेदनी आत्मा में निबद्ध है। पहले वेदनी भी आत्मा में निबद्ध है, सुख दुख में निबद्ध है ऐसा कहा था, कारण कि साता व असाता संबंधी विपाक के फल रूप सुख दुख जीव में ही पाए जाते हैं। वेदनी के लिए सुख दुख में निबद्ध है ऐसा कहा था, और ये सुख दुख किस में पाए जाते हैं, जीव में, इसलिए आत्मा में निबद्ध कहा। मोहनीयम दुविहम, दंशन मोहनीयम चारित्र मोहनीयम चेदी तथ दंशन मोहनीयम सौव दव्येषु निबद्धम न सौव पज्जायेषु। देखो पहले में, पहले वहां पर उन्होंने क्या कहा था, मोहनीय के आत्मा में निबद्ध है। हाँ मोहनीय कर्म दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय के भेद से दो प्रकार का है, उनमें दर्शन मोहनीय सब द्रव्यों में निबद्ध है, सब पर्यायों में नहीं। मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय सब द्रव्यों में निबद्ध है, सर्वघाती है ना ये, क्योंकि वे समस्त द्रव्यों संबंधी श्रद्धान गुण का विघात करने वाली प्रकृतियां हैं। नहीं, अन्य द्रव्यों संबंधी उसकी जो विपरीत मान्यता थी ना, क्या मान्यता थी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, उसने भेद जाना है, मैं उसको, मैं शरीर को मैं मान रहा था, वो पुद्गल को मैं मान रहा था, वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता मान रहा था, गुरु से ज्ञान होता है मान रहा था, द्रव्यों के स्वरूप संबंधी उसकी भ्रमणा चल रही थी, तो सभी द्रव्यों संबंधी उसकी भ्रमणा थी, कहते समस्त द्रव्यों संबंधी श्रद्धान गुण का विघात करने वाली प्रकृतियां हैं। सम्यक्त्व दर्शन मोहनीय प्रकृति कुछ पर्यायों में निबद्ध है, क्योंकि उसके द्वारा सम्यक्त्व के एक देश का घात पाया जाता है, एक देश का नहीं, वो कुछ चलमलिन दोष होते हैं। शंका, दर्शन मोहनीय चूंकि घातिया कर्म है, अतएव वह आत्मा में निबद्ध है, ऐसी प्ररूपना यहाँ क्यों नहीं की गई है, क्योंकि वैसे प्ररूपना पहले ही की गई थी 4 नंबर के सूत्र में, कि मोहनीय कर्म आत्मा में निबद्ध है कहा था। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि 6 द्रव्य और 9 पदार्थ विषयक श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, अतएव घाते जाने वाले जीव गुणों की प्ररूपणा करने के लिए बाह्यार्थ निबंधन की प्ररूपणा की गई है। वो घाता तो श्रद्धा गुण का है, परंतु किस विषय में, किस संबंध में श्रद्धा गुण है, किस संबंधी श्रद्धा, हाँ 6 द्रव्य और 9 पदार्थ, उसमें देव गुरु शास्त्र सब कुछ आ गए, सब कुछ आ गया ना, विश्व में जो कुछ है वो 6 द्रव्यों में भी आ गया और 9 पदार्थों में भी सब। सम्यक्त्व का एक देश घात पाया जाता है, वो क्षोभम सम्यक्त्व है, क्षायिक नहीं है। हाँ कुछ पर्याय में निबद्ध है का ना, वो देशघाती प्रकृति है, यानी सम्यक्त्व का पूरा घात नहीं कर सकती, जैसे मिथ्यात्व घात करती है। चारित्र मोहनीयम अप्पाणम में निबद्धम, चारित्र मोहनीय कर्म आत्मा में निबद्ध है, अभी मिथ्यात्व के लिए तो बाह्यार्थ की मुख्यता की। हाँ शंका, राग और द्वेष बाह्य अर्थ का आलंबन करने वाले हैं, और चूंकि उन्हीं के निरोध करने का नाम चारित्र है, अतएव चारित्र मोहनीय कर्म सब द्रव्यों में निबद्ध है ऐसा यहाँ कहना चाहिए। समाधान, यह सत्य है किंतु उसकी यहाँ अपेक्षा नहीं की गई है। कारण कि बहुत बार प्ररूपना की जाने से उपदेश के बिना भी यहाँ उसका ज्ञान हो जाता है। यानी ये भी बाह्यार्थ में इसको है, उसकी बात तो है वहाँ पर। निरयाउवम निरय भवमि निबद्धम, नारकायो नारक भव में निबद्ध है, कारण कि उसमें नारक भव धारण कराने की शक्ति देखी जाती है। शेषा उवाणी भी अपप्पणो भवेशु निबद्धानी, शेष तीन आयु कर्म भी अपने अपने भवों में निबद्ध है, क्योंकि उनसे उन भवों का अवस्थान पाया जाता है। नामम तिधा निबद्धम, जीव निबद्धम, पोगल निबद्धम, खेत निबद्धम च, ये पहले भी बात आई थी। नाम कर्म तीन प्रकार से निबद्ध है, जीव द्रव्य में निबद्ध है, पुद्गल में निबद्ध है और क्षेत्र में निबद्ध है। इस प्रकार नाम का निबंधन तीन प्रकार का ही है, क्योंकि इनके अतिरिक्त अन्य कोई निबंधन पाया नहीं जाता। पुद्गल विपाक निबद्ध प्रकृतियों की प्ररूपणा करने के लिए गाथा सूत्र कहते हैं, वो कल देखेंगे हम। जावाणी के ज्ञान ते